الله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. کل جو ہم نے حدیثیں پڑھی تھیں، حدیث نمبر 280 پڑھی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا مفہوم بنتا ہے کہ قیامت کے قریب آدمی تمنا کرے گا کہ کاش میں قبر والے کی جگہ ہوتا، یعنی اپنی زندگی کو وہ موت سے بدتر سمجھے گا اور موت کی تمنا کرے گا. تو اس کا ایک ایکسپلینیشن، یہ جو آج کے دور کے اندر بہت زیادہ ڈپریشن، مایوسی اور حتیٰ کہ اپنی جان لے لینے کے واقعات بڑھ گئے ہیں، سوئسائڈ، خودکشی کے، تو یہ بھی اس کا نظر آتا ہے. اور دوسرا یہ بھی کہ جتنی جنگیں اور ظلم مظالم وغیرہ کے معاملات ہوں گے، تو کسی انسان کے گھر کے تمام افراد جب لقمہ اجل بن جائیں تو اس کو اپنی زندگی بھی بے معنی اور بے مقصد نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ایسا سوچتا ہے کہ کاش کہ میں بھی ان کے ساتھ مر جاتا، میں بھی ان کے ساتھ ہی قبر برد ہو جاتا. اس کے بعد دوسری حدیث جو کل پڑھی تھی، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب صرف اسلام کا نام باقی رہ جائے گا، اور مسجدیں جو ہیں وہ ان کی، یعنی قرآن کے نقوش باقی رہ جائیں گے، یعنی لوگ جو ہے وہ قرآن اپنے گھروں میں رکھا کریں گے، قرآن کو پڑھا بھی کریں گے لیکن اس کو سمجھا نہیں کریں گے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی نیت نہیں کریں گے، جو کہ اصل مقصود ہے قرآن کا. کیونکہ قرآن جو ہے وہ کتاب ہدایت کے طور پر نازل کی گئی ہے، برکتیں اور اس سے جو ہم علاج معالجہ کرتے ہیں تو یہ اس کے سائیڈ بینیفٹس ہیں، ٹھیک ہے. یعنی برکت جو ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی قرآن سے علاج کا انکار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ قرآن کے سائیڈ بینیفٹس ہیں، یہ ایڈیشنل بینیفٹس کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ اصل مقصد نہیں ہے قرآن کا. تو اگر کوئی ان کو فقط قرآن کو فقط اسی حد تک رکھے کہ صرف اسے علاج کر لے کہ جی کوئی بیماری ہو گئی، کینسر کا علاج، فار ایگزامپل آج کل بہت زیادہ کہ جی سورہ رحمان کی تلاوت سنیں تو کینسر کا علاج ہو جاتا ہے، اور فلانی تلاوت سنیں تو جنوں کا علاج ہو جاتا ہے، اور بھوت بھاگ جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں، رائٹ. تو اور یا یہ کہ بس قرآن پڑھنے سے ثواب ملتا ہے یا برکتیں نازل ہوتی ہیں، تو بھائی وہ تو خیر اور اچھی بات ہے کہ برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور اس قرآن نے خود اس کا فرمایا، بلکہ علاج کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے اور برکتوں اور رحمتوں کا بھی قرآن کے اندر ذکر ہے، لیکن پھر بھی یہ اصل مقصود نہیں ہے قرآن کا. تو اگر کوئی اس کو اسی کام کے لیے استعمال کرے تو یہ قرآن کے ساتھ زیادتی ہوگی، ظلم ہوگا قرآن کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو اصل قرآن کا مقصد ہے کہ ہم اس کے اوامر و نواہی کو سمجھیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں اپنی. پھر اس کے بعد اسی میں فرمایا تھا کہ جو علماء ہوں گے وہ سب سے زیادہ برے لوگ ہوں گے اس زمانے کے، اس جو موجود ہیں، اور فتنہ انہی سے شروع ہوگا اور انہی کے اندر واپس لوٹے گا. تو اس کے تحت جو ہے بات ہوئی تھی کہ یہاں پر علماء سو مراد ہیں، اور علماء سو ہوتے کون ہیں یہ بھی کیونکہ بات کلیئر نہیں ہے کہ علماء سو کون ہوتے ہیں. تو یہ آج ویسے تو بار بار بیانات کے اندر اور کلاس کے اندر مینشن کر چکا ہے کہ علماء سو وہ نہیں ہوتے جو کہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتے، ٹھیک ہے. عوام الناس کے اندر آج کے دور میں تصور کیا ہے کہ انہوں نے اپنے طور پر علماء کی ذمہ داریاں بنا لی ہیں، علماء کی رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز عوام نے ڈیفائن کر لی ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر وہ علماء کو ان رولز اینڈ ریسپانسبلٹیز کے اوپر تولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں اگر یہ والے رول اور ریسپانسبلٹی یہ عالم صاحب پوری کر رہے ہیں تو پھر تو یہ علماء حق میں سے ہیں، اور اگر یہ نہیں پوری کر رہے ہیں تو یہ علماء سو میں سے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ بہت ہی غلط اور بری بات ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے، اور علماء سو کی یہ تعریف نہیں ہوتی ہے کہ جو آپ کی من مرضی کے مطابق دین کا کام کرے یا بیانات آپ کی مرضی کے مطابق دے، آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ خطبے دیا کرے، اور آپ کی مرضی کے مطابق تحریریں لکھا کرے، ٹھیک ہے. تو وہ علماء سو نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ علماء حق نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو علماء سو کون ہوتے ہیں؟ علماء سو کی تعریف کے اندر دو باتیں سب سے اہم ہوتی ہیں. ایک یہ کہ وہ ان کا عقیدہ خراب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عقیدے کے خراب ہوتے ہیں، عمل کی بات نہیں کر رہے، ٹھیک ہے. عمل دوسرے لیول کی بات ہے. پہلی سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ عقیدہ کیا ہے، ٹھیک ہے. تو بدعتی ہیں فار ایگزامپل، राइट, बिदत को प्रमोट करते हैं, बिदत को लोगों के दरमियान फैलाते हैं, ठीक है, गलत अकीदे की बात करते हैं जो कि सहाबा कराम का अकीदा नहीं था। तो ये पहली चीज है जो कि उलमाए सू की डेफिनेशन को डिफाइन करती है, ठीक है। और नंबर टू जो है वो अमल की खराबी, ठीक है। और अमल की खराबी में भी क्या मामला होता है? अमल की खराबी में मामला ये होता है कि यानी अमल की खराबी का मतलब क्या है? अमल की खराबी का मतलब ये होता है कि दुनियावी गर्ज की खातिर दीन को तब्दील कर देना, ठीक है। जैसे कि पीछे हमने पीछे पढ़ा था या इसी हदीस के, हाँ, कि जो साहिब इख्तदार लोग हैं या पैसे माल पैसे वाले लोग हैं, ठीक है, तो उनको खुश करने की खातिर, उनकी नाराजगी से बचने की खातिर दीन के अहकाम को उनके सामने तब्दील करके पेश करना, या उनकी गलत बातों को प्रेस करना कि जी हाँ आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, आप तो मतलब आपसे ज्यादा अच्छा तो कोई हाकिम है ही नहीं, आपके जैसा अच्छा जो है वो माल पैसे वाला, कि आप तो माशाल्लाह मस्जिद के लिए खूब चंदे देते हैं, आप तो हमारे मदरसे के लिए खूब चंदे देते हैं, तो आप तो जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, ठीक है, आपका हराम भी हलाल है, ठीक है। तो इस तरीके से जो बातें करते, इसको कहते हैं दुनिया की खातिर दीन को बेच देना, ठीक है। तो ये जिसको दुनिया परस्ती कहते हैं, तो ये जो है ना, ये यानी दूसरी कॉज बनता है और आलमे सू बनने का, ठीक है। अमल की खराबी का ये मतलब नहीं होता कि वो बहुत ज्यादा तकवे के बुलंद तरीन मेयार के ऊपर जिंदगी गुजारता हो, ठीक है, कि यानी इस तरह से जो हम तोलते हैं ना लोगों को, कि ये जो तकवा के कमाल पर ये आलिम साहब होने चाहिए, और अगर ये तकवा के कमाल के ऊपर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि ये उलमाए सू में से है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आलम आलम जो होता है उसको तकवा के आला दर्जे के ऊपर फायदा होना चाहिए, उसका हम और अमल जो है वो अंबिया जैसा होना चाहिए या सहाबा जैसा होना चाहिए, ठीक है, या जो है फरिश्तों जैसा होना चाहिए, ठीक है। ये हमारी लगाई हुई एक्सपेक्टेशंस हैं, ये आलम हक की डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। आलम से भी गलती होती है, आलिम भी इंसान होता है, बेशक उसको इल्म ज्यादा होता है, उसको उसके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा होती है दूसरों के मुकाबले में कि वो तकवा की जिंदगी इख्तियार करे और नेकी तहारत पर अमल करे और गुनाहों से बचे, उसकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है, लेकिन वो फरिश्ता नहीं बन जाता, वो नबी नहीं बन जाता, उससे भी गलती हो सकती है। बल्कि आज के दौर के अंदर तो एक बड़ी मुसीबत यह है कि आलिम से गलती नहीं भी हुई होती, लेकिन कोई दुश्मन, चाहे वो काफिर दुश्मन हो चाहे वो मुसलमान नाम का कोई बंदा हो, ठीक है, उसको उलमा से दुश्मनी होती है, ठीक है, काफिर होता है तो कुफर की वजह से दुश्मनी होती है, वरना जो है वो मुलहिद होता है, जिंदीक होता है, ठीक है, साजिशी इंसान होता है, मुनाफिक होता है, तो उसको उलमा से दुश्मनी होती है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि दीन को अपनी मनमर्जी के मुताबिक प्रमोट करना चाहते हैं और उलमा उनके रास्ते में रुकावट बनते हैं, तो इस वजह से वो आलिमों उलमा के दुश्मन बन जाते हैं। तो ऐसे लोग आज के दौर में क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा वो सोशल मीडिया के ऊपर ना उलमा के बारे में गलत गलत बातें लिख करके फैलाना शुरू कर देते हैं, और हम आप जो हैं वो उनके इस बुरे मैसेज के कैरियर्स बन जाते हैं, ठीक है, और उनको आगे फैलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। वो यानी वो तो एक बंदा होता है ना चलाता है, और उसके बाद हम उसको आगे चलाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से गलती आलिम ने करी भी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन दुनिया के अंदर उसको बहुत बुरा बना के पेश कर दिया जाता है, ठीक है, और सारे जो है वो आगे से उसके ऊपर तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो आज तो मसला ये भी है कि गलती नहीं होने के बावजूद हम गलती थोप देते हैं, जबकि हमारे अकाबरीन ने जो बात समझाई है वो तो ये है कि अगर आलिम ने वाकई गलती कर भी दी हो तो भी उसकी तहतशीर ना करना, ठीक है, तो भी उसकी तशहीर ना करना, वरना लोगों का दीन पर से एतमाद उठ जाएगा, इसलिए कि ये उलमा ही हैं जो कि दीन को एक्सप्लेन करके आपको बताते हैं कि तुमने करना क्या है, किताबों से दीन नहीं समझ में आता है, ठीक है, और अपनी जाती जिंदगी में पता नहीं लगता कि मैंने कैसे इंप्लीमेंट करना है इस दीन को, ये तो उलमा है जो कि आपको बताते हैं। तो अगर उलमा की बात के ऊपर आपका ट्रस्ट खत्म हो गया तो फिर आप तो उनसे पूछना छोड़ देंगे, आप तो उनसे रहनुमाई हासिल करना छोड़ देंगे, किसी एक आलिम की बुराई की वजह से ना पूरे यानी इस उलमा के कैटेगरी के ऊपर से ना एतमाद उठ जाता है, ठीक है, और जब एतमाद उठ गया ना तो फिर ईमान भी उठ जाता है, ठीक है, बिकॉज ईमान इज बेस्ड ऑन एतमाद। हमने कभी ना अल्लाह को देखा है ना कभी हम देखेंगे मरने से पहले, कभी भी नहीं देखेंगे अल्लाह को, कभी भी हम जन्नत को नहीं देखेंगे, कभी भी जहन्नुम को नहीं देखेंगे, कभी भी हम जैसे लोग तो रसूलुल्लाह को कभी नहीं देखेंगे, ठीक है। ख्वाब में किसी को ज्यारत हुई तो वो ख्वाब की ज्यारत होती है, ठीक है, वरना किसी को ख्वाब में भी नहीं होती है ज्यारत। तो हमने तो कभी रसूलुल्लाह को नहीं देखना, सहाबा ने तो रसूलुल्लाह को कम अज कम देखा था, हमने तो उनको भी नहीं देखना। तो हम किस दीन पर अमल कर रहे हैं? हम टोटल एतमाद की बेसिस पर तो दीन पर अमल कर रहे हैं। और एतमाद, अम्मी अब्बू का एतमाद तो एक सर्टेन उम्र तक रहते हैं ना, फिर जब बड़े हो जाते हैं तो फिर अम्मी अब्बू का मामला तो वैसे ही खत्म हो जाता है, फिर किस बात, किसके ऊपर एतमाद करेंगे? तो ये उलमा ही तो है कि जिनके ऊपर एतमाद करके हमने दीन पे अमल करना है। तो इस एतमाद को ये दुश्मन लोग जो होते हैं ये खराब कर देते हैं, और हम उसको खराब करने में उनकी मदद करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो इन बातों से बहुत बचना चाहिए, इस मसले को आज के दौर में बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है कि उलमाए हक कौन होते हैं, उलमाए सु कौन होते हैं, ठीक है, और उलमा की रिस्पेक्ट और उलमा के ऊपर एतमाद कितना दीन के लिए जरूरी है, कि इसके बगैर आप चल नहीं सकते इस दीन के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से ये जो हदीस है ना, इसको अगर अलग से लेकर के, बहुत सारे माशाल्लाह आजकल के सो कॉल्ड खैर ख्वाह मुसलमान, राइट, आजकल तो ये मामला है कि हदीस को भी चेंज करके आगे फैलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो वो तो एक बड़ी मुसीबत उनको, तो यानी तो अजाब वाली बात है ना, अल्लाह के हदीस तक, हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, उसको बदल दिया, ठीक है। तो ये तो अजाब की यानी बड़े अजाब की बात है, जो कि इस हदीस, इस किताब के अंदर भी इस तरह की एक हदीस है कि जो ऐसी चीज को मेरी तरफ मंसूब करेगा कि जो कि मैंने नहीं कही होगी, तो वो जहन्नम में अपना ठिकाना बना ले, राइट। लेकिन अगर गलत चेंज ना भी करें हदीस को, सिर्फ इसी हदीस को अलग से उठा करके एक व्हाट्सएप मैसेज में आप लिख दें, ठीक है, इसी हदीस को सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज के अंदर आप कॉपी कर दें और लोगों में फैलाना शुरू कर दें, ठीक है, तो क्या होगा? हदीस तो बिल्कुल सही है, राइट, लेकिन जो इसको पढ़ेगा हमारे जैसा बंदा, राइट, जिसका उलमा से कोई ताल्लुक नहीं, कोई हमें हमारा कोई वक्त नहीं गुजरता उनके साथ, हम इंगेज नहीं होते उनके साथ, तो वो इस हदीस को पढ़ेगा और वो सारे उलमा के खिलाफ हो जाएगा, ठीक है। वो कहेगा कि हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखो ये बात कही है उलमा के बारे में, ठीक है। तो अब वो क्या करेगा? सारे उलमा के खिलाफ हो जाएगा, या जहां उसको किसी आलिम की कोई बुरी बात पहुंचेगी, चाहे सच्ची हो चाहे झूठी, वो कहेगा हाँ बिल्कुल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि आलिम ऐसे हो जाएंगे, तो फिर ये आलिम तो ऐसा हो गया, तो कौन सी ऐसी यानी मुश्किल बात है इसको समझना, ठीक है। तो लोग इस किस्म की बातें आज के दौर में बहुत ज्यादा करते हैं, और सोशल मीडिया की वजह से ना इस शर को जो है वो खूब जो है यानी कसरत, जिस तरह हमने बात करी थी कि इस दौर के अंदर शर के अंदर सख्ती नहीं है बल्कि शर के अंदर कसरत है, तो कसरत जो है वो इसी इंटरनेट और सोशल मीडिया की वजह से अब आ गई है। बहरहाल हमें अपने आप को बचाने की बहुत फिक्र करनी चाहिए, और कम अज कम जो लोग हमारे हल्का अहबाब के अंदर हैं, हमारे हल्का असर के अंदर हैं, ठीक है, उनके जहन साजी और उनके जहन को गलत तरफ जाने से बचाने की अपने तौर पर कोशिश करते रहना चाहिए, और सबसे पहले इनसे भी, इससे भी बढ़ के जो है वो अल्लाह ताला से खूब दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें इन फितनों से महफूज रखें। तो आज की हदीस है, قال النبي صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان آخر الزمان أقوام إخوان العلانية أعداء السريرة فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف يكون ذلك قال ذلك بالرغبة بعضهم إلى بعض والرحبة بعضهم من بعض. تو ترجمہ با محاورہ اس کا بنا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسی قومیں پیدا ہوں گی کہ جو ظاہر میں تو دوست بنیں گی مگر باطن میں دشمنی کریں گی۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے بعض بعض سے حرص اور لالچ رکھیں گے اور بعض بعض سے خوف زدہ ہوں گے۔ عجیب، یعنی کیا پکچر کھینچی آج کے ہمارے احوال کی۔ تو لفظی ترجمہ بنا کہ قال النبی، قال فعل ماضی ہے، النبی اس کا فاعل بن رہا ہے، حالت رفع کے اندر ہے۔ تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو جو ہے وہ جملہ معترضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کا جو ہے وہ یہاں پر جو مضمون بیان ہو رہا ہے اس سے تعلق نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر صلوات و سلام بھیجنے کا یا درود شریف بھیجنے کا یہ ایک طریقہ ہے، تو بیچ میں اس کو انسرٹ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے نا عربی گرامر کے اندر اس کو جملہ معترضہ کہا جاتا ہے، لیکن ہے یہ ثواب کا باعث، اگرچہ کہ جملہ معترضہ ہے گرامر کے اعتبار سے۔ تو اس کے بعد پھر جو حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، یکون فی آخر زمانی، تو یکون حدیث نمبر 282 روضۃ الطالبین میں، 282 तो यकूनु जो है वो काना का फेले मुजारे होता है, काना यकूनु कौनन फहुआ काइनुन, इस तरह से सरसगीर बनती है काना यकूनु। कोई बताएगा काना यकूनु किस बाब से है? काना यकूनु कौनन फहुआ काइनुन, तो सुलासी मुजर्रद के छह बाब, उनमें से ये किस बाब से ताल्लुक रखता है? नसरा से। चले माशा, जवाब तो आपने बिल्कुल ठीक दिया है। अब ये कैसे नसरा से बनता है? हालांकि नसरा यंसुरु नसरन फहुआ नासिरन होता है, और ये तो काना यकूनु है, तो ये काना असल में नहीं था बल्कि ये क्या था? कवना। हाँ, कवना असल में था, और ये मुजारे इसका यकवुनु था, यकवुनु, तो यकूनु बन गया वाव को साकिन करके। ठीक है, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, तो यकूनु का मतलब हो गया कि होएगा, क्योंकि काना यकूनु कौनन का मतलब होता है होना, टू बी। अंग्रेजी में जैसे बी होता है ना, एक यानी पार्टिकल होता है जिसका के प्रेजेंट टेंस जो है वो इज होता है, और ए आर ई आर होता है अगर प्लूरल के लिए हो, इज एंड आर, और पास्ट टेंस जो है उसके लिए वॉज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, वॉज एंड वर, और फ्यूचर टेंस के लिए जो है वो विल बी या विल इस्तेमाल करते हैं। तो काना भी जो है ना अरबी में बी की तरह का ही एक लफ्ज है, ठीक है, तो इसका मतलब होना होता है। तो होएगा फी आखिर जमान, यानी जमान जमाने के आखिर में, ठीक है, ये आखिर है आखर नहीं है, तो आखिर मतलब एंड या लास्ट, जमाने के आखिर में। अकवामुन, अकवाम कौम की जमा है, और कौम से मुराद जो है वो एक यानी जमात होती है लोगों की, चाहे तीन लोगों की जमात हो या तीन से ज्यादा की जमात हो, कि बहुत बड़ी जमात हो, सब इसमें मुराद हो सकते हैं। तो कौम खुद भी एक मोनस के लफ्ज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर अकवाम उसका मजीद मोनस बनता है। तो ऐसी कौमें होंगी, यानी कई ऐसे ग्रुप्स होंगे लोगों के, कई ऐसी जमातें होंगी लोगों की। इखवानुल अलानियती, इखवान अखू जैसे नीचे लिखा हुआ है, जमा अखुन, अखुन की बमानी भाई, तो ये भी चूंकि एक डराइव्ड वर्ड है तो इसका भी फेले माजी और मुजारे बनता है, तो फेले माजी बना अखा और मुजारे बनेगा यखू, अखा यखू। तो असल में ये भी नसरा यंसुरु बाब से है ना, तो ये अखवा यख वुहू, इस तरह से कुछ बनेगा। अखवा तो माजी हो गया और यख वुहू ये मुजारे हो गया। उखूवतन इसका मस्तर है, यानी दोस्त बनाना, दोस्त बनना, भाई होना, ठीक है, इसकी जमा इख्वान हो गई। अच्छा, अल अलानियती खुल्लम खुल्ला, जैसे ऐलानिया हम कहते हैं उर्दू के अंदर, तो जाहिर, और इसका भी माजी जो है वो अलिना या अलना भी होगा और अलिना भी होगा, और ये चारों बाब से आता है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो कि एक से ज्यादा अबवाब से इंग्लिश अरबी डिक्शनरी में या अरबी लुगत में आते हैं, जैसे ये जो है वो अलिना या अलुनु भी होगा नसरा यंसुरु बाब से, और अगर बाब दरबा यदरिबू से है तो ये होगा अलना या अलिनु, ठीक है, और अगर करुमा यकरुमु बाब से है तो ये बनेगा अलुना या अलुनु, ठीक है, करुमा यकरुमु के वजन पर, और समिया या बाब से भी हो सकता है तो ये समिया यस्माऊ के वजन पर अलिना या लनु, ठीक है, समिया यस्मऊ बाब से। तो मुमकिन है कि डिक्शनरी में अगर आप देखेंगे ना तो उसमें लिखा होगा कि अगर ये बाब समिया से आए तो उसका ये मतलब बनता है, और अगर बाप करुमा से आए तो उसका थोड़ा सा मुख्तलिफ मतलब बनता है, क्योंकि हर बाप की एक अलग खासियत होती है, ठीक है, तो इस वजह से एक ही वर्ड डिफरेंट बाबों में आकर के थोड़े थोड़े से डिफरेंस इन मीनिंग हो जाता है। अच्छा, अलनन व अलानियतन ये इसके मस्दर बने, दो यानी एक ही बेस वर्ब के एक से ज्यादा मस्दर भी हो सकते हैं, तो अलनन भी है और अलानियतन भी है, जाहिर होना दोनों का मतलब बनता है। अदाउन, अच्छा ये तो इसके बाद का है, इखवालुन इखवानुल अलानियती, यानी यानी भाई एलानिया के या जाहिर के भाई, जैसे उर्दू में हम कहेंगे ना कि जाहिर के भाई, दिखावे के भाई, ठीक है, तो इखवानुल अलानियती ये मुजाफ मुजाफ इलैही बन गया। और दूसरा लफ्ज भी इसी तरह से, अदा उस सरीरती, लिखा हुआ है नीचे कि जमा अदुवन की है बमाने दुश्मन, और इसका भी फेल माजी अदा यानी अदवा या अदुवु बनता है नसरा यंसरू से, और अदवन इसका दुश्मन होना, और अदवन अलैही अगर आ जाए इसके साथ तो अला हरफ जर और हा जमीर, तो अदवन अलैही का मतलब कि किसी से दुश्मनी करना या जुल्म करना किसी पर, ठीक है। तो ये अब ऐसा कर रहे हैं कि खाली उस मजदर का मानी नहीं बता रहे, बल्कि पीछे भी हमने देखा था कि मजदर के साथ साथ ना कुछ इसको कहते हैं सिला लगा देना, ठीक है। तो कुछ सिला लगा करके फिर उसका कंप्लीट बा मुहावरा मानी बता रहे हैं, पीछे भी इस तरह की दो तीन मिसालें आई थी। तो अदवन अलैही यानी जुल्म करना, क्योंकि अला का मतलब होता है ना पर, और हु जो है वो जमीर है, तो उस पर जुल्म करना। अच्छा, तो ये तो होगा, हो गया ये आदा का लफ्ज। सरीरा का लफ्ज जो है वो नीचे लिखा है भेद राज हुआ तय्यबुस सरीरती, कि वो बातिन का बड़ा अच्छा है, तय्यब का मतलब अच्छा होता है, और असरीरा यानी छुपी हुई जो बात है उसकी, यानी उसका अंदर बहुत अच्छा है, उसका बातिन बड़ा अच्छा है। इस तरह से मुहावरा इस्तेमाल किया जाता है। सरीरा जो है ये जमा है, इसकी जमा सरायर होती है, ठीक है। जैसे खैर वो तो ये तो सरीरा की जमा सरायर होती है, वैसे आपने लफ्ज सुना होगा कि असरारो रुमूज कहते हैं ना, तो असरार का जो लफ्ज है वो भी सिर की जमा है, तो सिर भी पोशीदा चीज को कहते हैं और असरार सिर की जमा होती है, यहाँ पर जो है वो सरीरा है तो सरायर इसकी जमा होती है। तो आदा उस सरीरती का मतलब कि दुश्मन यानी छुपे हुए, यानी छुपे हुए दुश्मन होंगे वो, यानी अंदर से वो एक दूसरे से के दुश्मन होंगे, ये इसका मतलब हो गया। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात थी सहाबा के लिए कि ऊपर से दोस्त अंदर से दुश्मन, क्योंकि खरे लोग थे ये, तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग थे। तो इन्होंने फिर पूछा फकीला कि कहा गया, ये कीला जो है वो काला का मजहूल होता है, यानी कहा गया या रसूल अल्लाही ए अल्लाह के रसूल, ठीक है। तो या हरफ निदा होता है पुकारने के लिए, और हरफ निदा के बाद अगर कोई इस्म आए जो कि मुजाफ बन रहा हो दूसरे लफ्ज का, यानी उसके अगले लफ्ज का मुजाफ बन रहा हो, तो उसको मंसूब पढ़ते हैं, ठीक है। इसी वजह से ये या रसूलुल्लाह ही नहीं कहेंगे, बल्कि या रसूलल्लाह हालत नसब में डाल देंगे रसूल को, क्योंकि रसूल का लफ्ज मुजाफ बन रहा है अल्लाह के लफ्ज का, और ये हर्फ निदा या के बाद आ रहा है, इस वजह से इसको मंसूब पढ़ना जरूरी है। जब पीछे आपको बताया था कि अब्दुल्लाह नाम होता है अल्लाह का बंदा अब्दुल्लाह ही, लेकिन या के साथ अगर लगाएं तो या अब्दल्लाही पढ़ना जरूरी है, क्योंकि वो भी मुजाफ मुजाफ ले बन रहा है। अच्छा, उसके बाद यानी पूछा उन्होंने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकैफ यकून उज़ालिका, और कैसे होगा ये, यानी ये कैसे हो सकता है, ये कैसे, अजीब सी बात है। कैफा का मतलब कैसे, ये इस्म ज़र्फ़ होता है, और यकूनू होना जैसे कि या होगा, ज़ालिका ये इस्म इशारा है ये, ठीक है, कैसे ये होगा। काला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ज़ालिका ये बे, बे जो है वो वजह के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो ज़ालिका बे यानी ये वजह क्या बनेगी इसकी, रगबते बादहिम इला बादिन, बाज की बाज के साथ रगबत, ठीक है, रगबती ये मुजाफ बन रहा है, और ये हालत जर में इस बा की वजह से, ठीक है, जो कि हर्फ जर होता है बा, तो मुजाफ बन रहा, यानी ये हालत जर में तो बा की वजह से, लेकिन ये मुजाफ बन रहा है अगले बाज का, ये रगबती बागी, ठीक है। तो बाज की रगबत, रगबत इबादी का तर्जुमा क्या करेंगे, बाज की रगबत। अच्छा, अब ये बाज जो है वो फिर मुजाफ बन रहा है हम का, ठीक है। तो इसका अगर अलग से तर्जुमा करें बाज़हिम का, तो क्या बनेगा, उनमें से बाज, ठीक है, उनमें से बाज। तो तर्जुमा क्या बना, रगबत इबादहिम, उनमें से बाज की रगबत इला बाज़िन, बाज की तरफ, ठीक है, यानी आपस में एक दूसरे के लिए रगबत, ठीक है। ये अरबी का मुहावरा होता है, एक दूसरे के लिए जो बात करनी होती है ना, तो उसके लिए ऐसे बाज़ुहुम इला बाज़िन ऐसे करते हैं। इला हरफ़े जर है जिसका तर्जुमा टूवर्ड्स या लिए से करते हैं, और बाज़ का मतलब भाई उर्दू में जो बाज़ होता है यानी सम, इंग्लिश में सम। ठीक है, तो रगबते बाउद ही मेरा बाउदन का मुहावरा समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कुछ नहीं, मुजाफ मुजाफ इलैही ही, फिर मुजाफ मुजाफ इलैही ही, उसके बाद फिर इला हरफे जर, और उसके बाद फिर बाज। तो ये इस तरह से इसका तर्जुमा इंशाल्लाह आसान होता है समझना। अच्छा, ये तो हो गई एक रीजन। दूसरी रीजन क्या है? वा रहबते बाउदहिम मिम बाउद। तो रहबा का लफ्ज जो होता है ये नीचे लिखा हुआ है, रहिबा यरहबू समिया यस्मू, बाप से आता है। रहबतन व रहबन का मतलब होता है खौफ करना, ठीक है? तो जैसे कहा ताला अंतुम अशद रहबतन फी सुदूरिहिम, कि तुम बड़े शदीद हो खौफ में अपने सीनों के अंदर, यानी तुम्हारे सीनों में बहुत ज्यादा खौफ होता है। अच्छा, तो खौफ बाबहिम यानी बास का, उनमें से बास का खौफ मिम बाउदिन दूसरों से, ठीक है? ये मिम बाउदिन का तर्जुमा दूसरों से, ठीक है? यानी बाज दूसरों से खौफ करेंगे और बाज दूसरों से रगबत करेंगे, ठीक है? अब रगबत और रहब का जो लफ्ज होता है ये एक दूसरे का ऑपोजिट हो गया, एंटोनिम हो गए, मुतरादिफ, बल्कि मुतरादिफ नहीं, मुतजाद हो गए, ठीक है? तो रगबत जो होती है ये जो मोहब्बत का जज्बा होता है ना, तो मोहब्बत के जज्बे का सबसे पहला स्टेप जो होता है वो रगबत कहलाता है, ठीक है? आपके दिल में किसी चीज की तरफ रगबत पैदा होती है, सबसे पहले रगबत जब पैदा होती है तो फिर आप उस चीज को तलब करते हैं, ठीक है? और जब तलब करते हैं ना तो फिर वो आप उसके लिए मेहनत भी करते हैं, जब तलब करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ मेहनत तो करेंगे उसको हासिल करने में। तो जब आपको वो हासिल हो जाती है ना तो उसके साथ फिर आप टाइम स्पेंड करते हैं, जाहिर है वो आपको हासिल हो गई ना, अब आपने उसके साथ जरा वक्त लगाया, ठीक है? तो जब वक्त लगाते हैं ना किसी चीज के साथ तो फिर उसकी मोहब्बत पैदा हो जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले क्या चीज आई? रगबत, उसके बाद आई तलब, उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो बनी मोहब्बत। और मोहब्बत अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए, इवन जायज चीज की भी मोहब्बत अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो क्या बनती है, ये आप लोग बताएं। मोहब्बत अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर वो क्या बन जाती है? जी, किसी को वो याद है? इश्क जो है वो मोहब्बत ही को कहते हैं, इसी का एक लफ्ज है ये इश्क। अरबी जुबान में पूरे हदीस के लिटरेचर में एक दफा ये लफ्ज इश्क आया। नहीं, मोहब्बत इज इक्विवेलेंट टू इश्क, क्या बात हुई? जिससे मोहब्बत होती है उसको महबूब कहते हैं, फितना बन जाती है। चले, माशाल्लाह, ये आपने अच्छा जवाब दिया लेकिन ये सही जवाब नहीं है। तो मोहब्बत जब हद से ज्यादा बढ़ जाती है ना तो ये क्या बनती है? जी, जो सूफी हजरात मौजूद हैं क्लास में उनको तो मालूम होना चाहिए था, ला मरगूबी इल्लल्लाह, ला मतलूबी इल्लल्लाह, ला महबूबी इल्लल्लाह, आखिर क्या होता है? तो फिर क्या बनती है? मोहब्बत हद से बढ़ जाए तो क्या बनती है? फनीत। शिर्क? नहीं, सही जवाब है, इबादत बन जाती है, इबादत, ठीक है? मोहब्बत जब हद से बढ़ती है तो वो इबादत बन जाती है। जुनून तो फिनाइयत? नहीं, फिनाइयत वही वही, हाँ वही, इबादत को भी फिनाइयत भी कह सकते हैं, इसलिए कि जो माबूद होता है ना तो उसके ऊपर तो बंदा फिना हो जाता है, ठीक है? तो उसको फिनाइयत भी कह सकते हैं लेकिन वो इबादत बन जाती है। तो खैर, तो रगबत के बारे में चंद बातें थी, और रहबत जो है वो उसका खौफ वाली बात हुई। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद तशरीह भी पढ़ लेते हैं कि कयामत की निशानियों में से एक ये भी होगी कि लोगों में से इखलास का फुकदान होगा और निफाक आम होगा, यानी सच्चाई, इखलास, सिंसियरिटी, ये चीज़ें जो है वो कम हो जाएंगी लोगों में या ख़त्म हो जाएंगी और निफाक आम हो जाएगा। ख्वाहिशात को पूरा करने को आदमी अपनी जिंदगी का मकसद समझेगा, इसी बिना पर लोग आपस में दोस्ती उस वक्त तक रखेंगे जब तक इस दोस्त से अपनी गर्ज पूरी हो रही होगी। जब गर्ज पूरी होना बंद हो जाएगी तो सिर्फ ये नहीं कि ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएं, बल्कि दुश्मनी तक बात पहुंच जाएगी। इसके मद्दे मुकाबल शरीयत ने हुक्म ये दिया है कि दोस्ती और दुश्मनी की बुनियाद इखलास पर हो, दुनियावी अगराज पर ना हो। ठीक है, तो अगर आखिरत की नीयत होगी किसी के साथ दोस्ती बनाने की, तो फिर दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर किसी के साथ आप अल्लाह की निस्बत से दोस्ती करेंगे, तो फिर उसके साथ दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो दुश्मनियां पैदा ही उमूमी तौर पर इसलिए होती हैं क्योंकि हम जो है वो दुनियावी अगराज की खातिर लोगों से दोस्ती करते हैं या ताल्लुक बनाते हैं, और जब वो दुनियावी अगराज जो है वो फुलफिल होते हुए नजर नहीं आते हैं, तो फिर उनके बारे में दिल के अंदर नफरत पैदा हो जाती है, नापसंदीदगी, कराहियत पैदा हो जाती है। इसी वजह से नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि किसी औरत के साथ शादी करने की चार वजूहात होती हैं। ठीक है, खूबसूरती भी होती है, और उसका माल पैसा भी होता है, उसका खानदानी नसब भी होता है, और उसका दीन भी होता है। ये चार चीजें हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीन देख करके शादी करो। ठीक है, क्योंकि दीन जो है ये आखिरत की नीयत है, और इसके अंदर सबसे ज्यादा दवाम है। अगर वो बीवी तुम्हारी नेक होगी तो 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 तुम्हारे दिल के अंदर उसके लिए मोहब्बत होगी, चाहे उसके अंदर खूबसूरती हो ना हो। ठीक है, नेकी जो है अगर सही मानों में नेक होगी तो फिर नेकी तो बढ़ती है। ठीक है, वो कम नहीं होती, वो तो बढ़ती है। ठीक है, तो फिर वो बढ़ती रहेगी और तुम्हारी मोहब्बत भी बढ़ती रहेगी, क्योंकि तुम्हारा उससे निकाह करने का मकसद ही जो है वो नेकी थी। लेकिन अगर तुमने खूबसूरती की वजह से शादी करी, तो खूबसूरती तो चंद दिन की होती है। ठीक है, पता चला कुछ तो ऐसे केसेस भी सामने आते हैं कि जी खूब मेकअप करके और इस तरह करके फिर शादी हो गई, बाद में पता चला कि वाकई ऐसा मामला नहीं है, कुछ उल्टा ही मामला था। ठीक है, या ये कि अगर वाकई हसीन हैं भी, लेकिन अंदर की जो है वो कोई चुड़ैन है, डायन है अंदर से। ठीक है, तो फिर वो चंद दिनों के बाद वो जो खूबसूरती है वो तो खत्म हो जाएगी, उसका उसका असर ही खत्म हो जाएगा, और फिर वो नफरत शुरू हो जाएगी। इस तरह से बाकी चीज़ों का भी मामला होता है। ये सारी टेम्प्रेरी चीज़ें, दीन ही वो चीज़ है जो कि मरने के बाद तक बाकी रहती है, और हत्ता कि आखिरत में भी अल्लाह ताला ने जो शोहर और बीवी जन्नत जन्नत में जाएंगे, तो वहां पर भी पहुंच करके ये शोहर और बीवी ही रहेंगे। तो इसी के अंदर दवाम है। और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मन अहब्ब लिल्लाह व अबغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استكمل الايمان। इसी वजह से अल्लाह की नस्बत से जो भी काम किया जाए, मोहब्बत का हो या दुश्मनी का हो या किसी को देने का हो या किसी को रोकने का हो, तो ये अगर किसी को कैफियत मिल जाए तो फिर उसका ईमान कामिल हो जाता है। खुलासा यह हुआ कि क़यामत के करीब हर चीज़ में तब्दीली वाक़ हो जाएगी, तो वो दोस्ती की बुनियाद जो सिर्फ इखलास पर होती है उसमें तब्दीली आ जाएगी, और फिर उस दोस्ती की बुनियाद ज़ाती अगराज़ और ख्वाहिशात पर रखी जाएगी। दुनियावी अगर आप हलकों में जाकर के देखें जहाँ पर के इवन थोड़ा दीन भी नहीं होता। ठीक है, हम जिस दीन पर अमल कर रहे हैं बज़ाहिर बड़े दीनदार मशहूर हैं और बड़े जी माशाल्लाह नज़र भी आते हैं, दाढ़ी भी है, टोपी भी है, और जुब्बे भी पहने हुए हैं, और बुक्के भी पहने हुए हैं, राइट। तो इतने यानी हकीकत यह है कि हम बहुत थोड़े दीन पर हैं, जैसे कि पिछले दिनों बात भी हुई थी कि 10% दीन पर। ठीक है, तो हम तो 10% भी दीन पर नहीं है, 10% तो शायद आज के दौर के उलमा हैं। ठीक है, जो दीनी मदारिस के तलबा हैं ना, उलमा हैं, जो उसी माहौल में रहते हैं और वो सुन्नतों पे अमल करते हैं। ठीक है, तो वो 10% दीन पर हैं, या बड़े मशायख हैं वो समझ लें जी 40-40% दीन पर कोई हुआ, कोई 30% दीन पर हुआ। हमारे जैसे लोग जो हैं वो इस तरह के थोड़े बहुत दीनदार हो जाने के बाद जो है ना, वो ऐसी एक रफ एस्टिमेट के तौर पर हम शायद 3% दीन पर हैं या 2% दीन पर हैं। ठीक है, तो इस 2% और 3% दीन की वजह से, ठीक है, हम अपने जाती तजुर्बे से और अपने जाती मुशाहदे से बता सकते हैं कि जो लोग इस 2-3% दीन पर भी नहीं है ना, उनकी जिंदगी में जो फितने और फसाद और परेशानियां और उलझने हमें नजर आती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम इस 2% दीन की वजह से भी अल्लाह का शुक्र है, उनसे महफूज है। ठीक है, तो अगरचे के साउंड खत्म हो गया। अच्छा, किसी को आवाज नहीं आ रही? अच्छा ठीक है, ठीक है, तो बाकी लोगों को तो आ रही है, उनके साथ कोई हो सकता है। अच्छा, तो यार जैसे ही कह रहा था कि ये जो 2% ही दीन है ना, ये 3% दीन जो है ना, अल्लाह का शुक्र है इसकी भी इतनी बरकतें होती हैं कि बड़े बड़े झगड़ों से, बड़ी बड़ी परेशानियों से इंसान बच जाता है। छोटी मोटी परेशानियां तो हर शख्स में रहती हैं, हर जगह रहती हैं, हर खानदान में रहती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए ना, तो वाकई बहुत फर्क नजर आता है, बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है, ठीक है। और ये जाहिर है उसी को पता लगता है जो कि उधर जाकर के देखता भी है कि वहां क्या हाल चल रहा है, ठीक है। तो ये जो बहुत बड़ा निफाक वाला मामला है, तो ये जो जो लोग जो है वो यानी फिल्मी गाने और फिल्मी यानी दुनिया में जो लोग रहते हैं कि हर वक्त फिल्में देख रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और ड्रामे देख रहे हैं और इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं और खाली क्रिकेट खेल रहे हैं और यानी यही उनकी जिंदगी के अंदर है, इसी तरह वो टाइम पास करते हैं, इसी तरह उनके बच्चे टाइम पास करते हैं, ठीक है। बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन होते हैं, वो अपने उन्होंने सर्कल्स बनाए हुए होते हैं और माँ बाप ने अपने अलग अलग सर्कल्स बनाए हुए होते हैं, ठीक है ना। तो ये एक टिपिकल दुनियादार घर का नक्शा होता है, ठीक है। तो इस घर के अंदर जो अजियतनाक माहौल होता है कि हर बंदा एक दूसरे से ऐसी शदीद नफरत में मुबतला होता है, या ये कि अगर नफरत में बजाय मुबतला नहीं भी है तो भी एक अलग ही दुनिया चल रही है हर एक की, और हर एक की जिंदगी में पता नहीं क्या क्या, कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई किसी से इन्वॉल्व हो गया, कभी वैसे ही आपस में इन्वॉल्व हो गए एक दूसरे के साथ और फिर वो खानदान टूट गए, और ये यानी अजीब जो है ना वो एक जहन्नुम का नमूना पेश करती है ऐसी जिंदगियां, ठीक है। तो ये चीज जो है वो बहुत कसरत से हो जाएगी जमाने के आखिर में, ठीक है। तो इस हदीस से हमें ये बात बहुत क्लियर पता लगती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो थोड़े दिन पर भी आ जाते हैं ना, तो उनकी जिंदगी में से भी जो है ना वो निफाक कम हो जाता है, अगर पूरा खत्म ना भी हो, इसलिए कि पूरा खत्म करने के लिए तो फिर पूरा जाहिर है तज़किया नफ्स के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, इलाज मुआवजे के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके बगैर जो है वो ईमान कामिल तो नहीं नसीब हो सकता, ठीक है। उसके बगैर जो है वो आपको इस्तेकामत तो नहीं नसीब हो सकती, ठीक है। लेकिन कम से कम नफ्स लवामा तो नसीब हो जाता है ना, मलामत करने वाला नफ्स जो कि गुनाह के ऊपर परेशान रहता है और वो गुनाह को छोड़ने की कम से कम अल्लाह ताला से दुआ तो करता रहता है ना, ये भी बहुत बड़ा मुकाम है आज के दौर में हासिल हो जाना, ठीक है। तो कोई सवाल हो तो पूछिएगा वरना आगे चलते हैं। अगली हदीस है हदीस नंबर 283 कि قال النبي صلى الله عليه وسلم يذهب الصالحون الاول فالاول والطبقه حفاله كحفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله بالتا کہ ترجمہ با محاورہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک لوگ یکے بعد دیگرے اس دنیا سے گزرتے جائیں گے، بدکار لوگ جو یا کھجور کی بھوسی کی طرح باقی رہیں گے، ہاں بدکار لوگ جو یا کھجور کی بھوسی کی طرح باقی رہیں گے جن کی اللہ تعالیٰ مطلقاً پرواہ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یذہب الصالحون، چلے جائیں گے صالحون، ذہب یذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، ٹھیک ہے، جاء یجیو کا مطلب ہوتا ہے آنا، اور ذہب یذہب کا مطلب ہوتا ہے جانا، تو چلے جائیں گے صالحون یعنی نیک لوگ، صالح کی جمع ہے یہ، ٹھیک ہے، صلحا یصلح صلحا فہو صالح، تو صالح واحد ہو گیا اور اس کی جمع صالحونا بنتی ہے، الاول فالاول یکے بعد دیگرے کے لیے عربی میں یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے، الاول جس کا مطلب فرسٹ، فالاول اس کا مطلب بھی فرسٹ، فرسٹ دین فرسٹ، لیکن مفہوم اس کا کیا عربی لغات میں لیا جاتا ہے کہ ایک کے بعد ایک، جیسے اردو میں کہتے ہیں ایک کے بعد ایک، اچھا، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ الشَّعِيرِ اَوِ التَّمْرِ، طبقہ یہ کل بھی ہم نے پڑھا تھا نا، بقا یبقا، بقا فعل ماضی ہوتا ہے باقی رہنا، یعنی وہ باقی رہا، اور یبقا اس کا مضارع ہوتا ہے کہ وہ باقی رہتا ہے یا وہ باقی رہے گا، تو یبقا کو گردان میں چلائیں تو یبقا یبقیان یبقونا طبقا، ٹھیک ہے، تو طبقہ کیا ہوا، واحد مؤنث غائب، فعل ماضی، فعل مضارع مجھول، سوری فعل مضارع معروف، واحد مذکر، واحد مؤنث غائب، فعل مضارع معروف، تو طبقہ یعنی باقی بچ جائے گا، حفالتن، حفالتن کیا ہے، نیچے لکھا ہوا ہے گھٹیا چیز، بھوسی، حفالت، حفالت الطعامی عربی میں استعمال ہوتا ہے کہ کھانے کا بھوسا جو ہوتا ہے، کھانے کے اندر جو چیزیں آپ کے رہ جاتی ہیں نا، جن کو کہ آپ کھانا پسند نہیں کرتے، آپ ان کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ ان کو ڈسٹبن میں ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ये बात है बड़ी 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 खतरनाक, ठीक है, कि वो चीजों जो है ना उनकी आप परवाह नहीं करते, उनको आप डस्टबिन में डाल देते हैं। ठीक है, तो एक मिनट, तो काहु फालति शईरी, काफ जो है वो तशबीह के लिए आता है। काफ एक हर्फ है, हर्फे जर होता है, ठीक है, काफ, सिर्फ काफ, और ये तशबीह देने के लिए आता है। जैसे कल असहरी के किसी बच्चे के बारे में कहना है कि ये बच्चा तो शेर जैसा है, तो आप कहेंगे कल असहरी, असद जैसा है, तो काफ तशबीह के लिए हो गया। हुफाला फिर वही वही लफ्ज है जिसका मतलब भूसा होता है, तो ये मुजाफ बन रहा है, और अशरीर इसका मुजाफ ही बन रहा है। शरीर जो है वो जौ को कहते हैं, बाड़ी, ठीक है, बाड़ी को शरीर कहते हैं। ये क्यों फोन कर रहे हैं क्लास के दौरान, क्लास के स्टूडेंट है, खैर तो बंद हो गया फोन। अच्छा, शरीर जो है वो जौ को कहते हैं, इसकी वाहिद जो है वो शरीरा होता है, ठीक है, शरीरतुन। अच्छा, अब तमरी, तो अव जो है ये तो हर्फ अतफ है जिसका तर्जुमा और से करते हैं या, ठीक है, तो अव हर्फ अतफ हो गया, तर्जुमा इसका या होता है, उर्दू वाला या, और अंग्रेजी वाला और अतमर ये खजूर को कहते हैं, ठीक है। ला युबाली हिम, ये क्या है, युबाली हिम, ला जो है वो नफी के लिए हो गया, और युबाली हिम जो है वो ये बना बाला युबाली, बाला इसका फेले माजी हुआ और युबाली इसका फेले मुजारे हुआ, तो युबाली के साथ हम की जमीर जुड़ी हुई है, ठीक है। तो जब किसी फेल के साथ, क्योंकि ये फेले मुजारे हैं ना, तो फेल के साथ जब कोई जमीर इस तरह से जुड़ी हुई हो तो वो उसका मफूल बनती है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो युबालीहिम का मतलब, युबालीहिम चूंकि लफ्ज क्या है ये, बाला और मुबालातन व बिलाअन व बालतन व बालन, इसका सबका मतलब जो है ना वो परवाह करना होता है। ला युबाली, ला उबाली, मुझे परवाह नहीं है, जैसे एक हदीस में आपने सुना होगा कि मुझे परवाह नहीं है कि तुम क्या करो, तो ला उबाली का लफ्ज आता है, तो ये वही लफ्ज है, उबाली, मुझे परवाह नहीं, ठीक है। तो युबाली हिम कि वो परवाह नहीं, परवाह करेंगे उनकी, और ला युबाली हिम वो नहीं परवाह करेंगे उनकी, वो नहीं परवाह करेंगे उनकी, ठीक है। एक मिनट, तो वो नहीं परवाह करेंगे उसकी, कौन नहीं परवाह करेंगे, अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला का नाम जो है यहां पर फाइल के तौर पे आ रहा है इस फेल के बाद, तो ला युबाली हिमुल्लाहु, नहीं परवाह करेगा अल्लाह ताला उनकी। बालतन, बालतन का मतलब भी वही, परवाह करना, ठीक है। तो ये जरा एम्फेसिस के लिए, उसी फेल के मस्दर को फाइल के बाद जुमले में लाते हैं, ठीक है, इससे वो बात जरा और ऑथेंटिक या एम्फेसाइज हो जाती है, मफूल मुतलक इसको कहेंगे। खैर, तो तर्जुमा इसका नहीं परवाह करेगा, परवाह करना, ये इसका लफ्जी तर्जुमा हुआ। अच्छा, तशरी में मौलाना बद्र आलम रहमतुल्लाह अलैह, बद्र आलम मीठी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलम गुजरे हैं, कुछ ज्यादा पुराने नहीं हैं, ये मक्का मुकरमा में आकर के रहना शुरू हो गए थे, वैसे इनका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है, गालबन पाकिस्तान भी ये शायद हिजरत करके आ गए थे और फिर वहां से मक्का मुकरमा आ गए, तो बद्र आलम मीठी रहमतुल्लाह अलैह इनका पूरा नाम है, मीरठ के रहने वाले जाएगा। बहुत बड़ी बड़ी किताबें और जबरदस्त किस्म की इन्होंने हदीस के ऊपर और उलूम के ऊपर किताबें लिखी हैं, बहुत बड़े आलम गुजरे हैं। तो मौलाना बद्र आलम रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस की तशरा करते हुए तहरीर फरमाते हैं कि इस्लाम के तनज्जुल की इस तेज रफ्तारी को किसी गोशे में बैठकर अंदाजा लगाया जाए कि हम कहाँ से कहाँ पहुंचे हैं, पहुंचते हैं, और हमारा इस्लाम पहले क्या था और आज हमारे पास इस्लाम का कितना हिस्सा बाकी है, ठीक है। यानी लोग गुजरते जा रहे हैं, नेक लोग गुजरते चले जा रहे हैं, और जो भूसा की तरह के लोग हैं, अपने आप के लिए भी इसी तरह से आजी के तौर पर बयान कर रहे हैं कि हम भी बस भूसा ही हैं, हमारे असल अकाबरीन जो है वो तो दुनिया से चले गए और जाए चले जा रहे हैं। तो जैसे कि इवन उस जमाने में बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि एक मरतबा हजरत अबू दरदार रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबी रसूल, गुस्से में भरे अपने घर तशरीफ लाए तो उनकी अहलिया ने पूछा कि आज आपके गुस्से का सबक क्या है। तो उन्होंने जवाब में फरमाया कि खुदा की कसम मैं अहदे नबूवत की कोई बात अब नहीं देखता सिवाय इसके कि लोग एक जगह जमा होकर नमाज पढ़ लेते हैं, बकिया उमूर में बहुत तगैयुर व तब्दीली महसूस करता हूँ। ठीक है, तो ये भी इस जुमले को भी इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ लेना होगा कि इन लोगों के स्टैंडर्ड जो थे ना वो बहुत हाई थे। ठीक है, यानी इनसे ऊपर स्टैंडर्ड जो हैं वो सिर्फ अंबिया के हैं और उनके अंबिया के बाद तो फिर सहाबा के स्टैंडर्ड्स हैं। तो इस वजह से चूंकि दीन के अंदर फिर लोग दाखिल होना शुरू हुए थे, बहुत सारे लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत नहीं उठाई थी वो भी फिर दाखिल हुए थे बहुत सारे। ठीक है, तो अब जिनके पास सोहबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थी तो उनका लेवल तो सहाबा के लेवल से कम ही होगा ना, सहाबा के बराबर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, और उसके अलावा ये कि सहाबा भी जो हैं वो भी दुनिया के अंदर फैले, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत खत्म हुई, हजरत इब्ने अब्बास का कॉल है ना या अब्दुल्ला इब्ने उमर का कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक के ऊपर मिट्टी डाल करके अभी खड़े ही हुए थे कि हमें अपने दिल की कैफियत के अंदर तब्दीली महसूस होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में जो दिल की कैफियत होती थी वो कैफियत जो है ना वो अब वैसी नहीं रही जैसे पहले थी। ठीक है, तो ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस नेचुरल प्रोसेस की वजह से हमें तनकीद करने का मौका नहीं मिलता कि हम जो है वो उस जमाने के लोगों के ऊपर तनकीद करना शुरू हो जाएं या ये एक्सपेक्टेशन शुरू करना शुरू हो जाएं कि हाँ वाकई मामला खराब हो गए थे और सहाबा भी जो है नाउज बिल्ला गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गए थे। ठीक है, क्योंकि ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। आज ही जो है वो एक और क्लास को ये आज पढ़ा रहा था तो मैंने बड़ी तफसील लिखी है सहाबा कराम के बुराई से बचने की कि सहाबा कराम जो है वो मासूम तो नहीं थे अंबिया जैसे, अंबिया तो मासूम थे, चाहे वो हजरत यूनुस अलैहि सलाम हो जो मछली के पेट में गुजरे थे पहुंचे थे, चाहे वो जो है वो कोई और नबी हो जिनसे कभी कोई गलती हुई हो, लेकिन अंबिया फिर भी मासूम ही हैं। ठीक है, तो उनकी गलतियां जो है वो दूसरे लेवल की गलतियां थी, वो गुनाह में तो आती नहीं है, लेकिन सहाबा जो है वो मासूम नहीं थे, लेकिन सहाबा महफूज थे। महफूज का मतलब क्या कि अल्लाह ताला की तरफ से इनको रजा की बशारत दे दी गई है कुरान के अंदर इन सब के लिए। ठीक है, जो भी ईमान के ऊपर थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते वक्त तो उनको अल्लाह ताला ने रजा की खुशखबरी सुना दी, और रजा जो है ना ये अल्लाह ताला की सिफात में से है। ठीक है, सिफत कदीमी है, यानी जिस तरह अल्लाह ताला कदीम है का मतलब हमेशा हमेशा से है, ये मतलब होता है कदीम होने का, तो अल्लाह ताला की सिफात भी कदीमी है। ऐसा नहीं है कि नाउज बिल्ला अल्लाह ताला को जब कुछ साल गुजर गए, कुछ अरसा गुजर गया तो अल्लाह ताला के अंदर एक सिफत पैदा हो गई। ठीक है, जैसे हमारे अंदर होता है ना कि हमारे अंदर बहादुरी की सिफत पहले नहीं होती, बच्चे होते हैं तो जरा बुजदिल होते हैं, जब बड़े होते हैं तो ताकत आती है, कुछ पावर आती है तो फिर बहादुर बन जाते हैं। तो बहादुरी की सिफत हमारे यहाँ कदीम नहीं है हमारे अंदर। ठीक है, हमारे शुरू से बहादुरी की सिफत नहीं है, तो अल्लाह ताला के साथ ऐसा नहीं है, अल्लाह ताला की सारी सिफात कदीम है। तो रजा जो है वो अल्लाह ताला की एक सिफत में से है, तो ये जो सिफत है ना ये अल्लाह ताला किसी को इसका मुजदा नहीं सुनाते अगर अल्लाह ताला को मालूम हो कि ये बाद में बुरा हो जाएगा। ठीक है, बाद में ये यानी काफिर हो जाएगा या बाद में जो है ये मुर्तद हो जाएगा या इसका ईमान पे खात्मा नहीं होगा और इसको तौबा की तौफीक नहीं होगी, तो अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स को जो है वो रजा की खुशखबरी नहीं सुनाते। ठीक है, तो सहाबा को चूंकि रजा की खुशखबरी सुनाई है, इसका मतलब यह है कि अगर उनसे कोई गुनाह हुआ भी जो कि शाज़ व नादिर होता था, ठीक है, बड़ी जमात के अंदर अगर एक आध बंदे ने कभी कोई गुनाह कर भी दिया हो तो वो पूरी जमात के ऊपर तो रिफ्लेक्ट नहीं होता, और दूसरा ये कि अगर किसी ने कर भी दिया तो उसको तौबा की तौफीक भी मिल जाती है और तौबा की तौफीक से वो गुनाह खत्म हो जाता है, धुल जाता है। ठीक है, तो इस तरह की जो अहादीस हमारे सामने आती है ना तो उसकी वजह से हम उस डायरेक्शन में नहीं जा सकते कि फिर जो भी हमें इधर से प्रोपेगेंडा सुनने को मिला या वो फलानी जगह पे किसी ने किताब में कुछ लिख दिया साहबा के खिलाफ या किसी ने जो है वो अपने बात में ऐसी बात कर दी साहबा के खिलाफ, तो हम समझे कि हाँ वो तो सही कह रहा होगा, इसलिए कि ये देखो खुद साहबी कह रहे हैं कि मामला खराब हो गया और मुझे कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में थी और अब जो है वो मुझे नजर नहीं आती। ठीक है, तो ये इस तरफ बिल्कुल भी हम नहीं जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपने यानी इनके स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसको देखना पड़ेगा कि वो जो 100% परफेक्शन वाला जो स्टैंडर्ड था या 99% वाला स्टैंडर्ड का जो था ना परफेक्शन वाला स्टैंडर्ड, वो 99 से होकर 98 हो गया, बस तो 98 होना कौन सी बुरी बात है, 98 तो हम तो 2% के लोग हैं ना, और वो तो 98% के लोग थे। ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि अगर तुम 90% से नीचे जाओगे तो फिर तुम तो बचोगे ही नहीं, तो वो तो 90% से ऊपर ही रहे ना, चाहे कुछ भी किया उन्होंने, बहरहाल वो 90% से ऊपर ही रहे और अल्लाह ताला की रजा उनके लिए गारंटीड है, तो वो 90% से ऊपर ही है सारे के सारे। तो हमारी तो जुबाने बिल्कुल ही सहाबा के मामले में ना बहुत यानी एहतियात करने की जरूरत है। तो आगे फरमाया कि आज अगर अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमें मौजूद होते तो क्या तबसरा फरमाते, ठीक है, हमारे हालात को देख करके। इसी को सूरत जैसे हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह का कौल मशहूर है कि वो फरमाते थे कि अगर सहाबा तुम्हें देख लें, अपने दौर के लोगों से जो कि ताबईन थे उनको कहते थे कि अगर सहाबा तुम्हें देख लें ना तो तुम्हें काफिर समझें, और अगर तुम सहाबा को देख लो तो तुम सहाबा को पागल और मजनून समझो, ऐसे दीवाने थे वो दीन के ऊपर, ठीक है। तो ये तो एक एक दौर के गुजरने से ये हालात हो जाते हैं। इसी को सूरत तीन में फरमाया कि हमने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया था लेकिन वो अपने आमाल की बदौलत जब गिरा तो असफलो साफिलीन में जा पहुंचा, मगर ईमान और आमाल साले वाले बचे हुए हैं, ठीक है। तो ईमान और आमाल साले वाले हमेशा बचे रहेंगे, सूरह असर के अंदर भी ये बात है और इन्हीं इसी किताब में जो हमने अभी हदीसें पढ़ी हैं तो उनके अंदर भी ये बात पहले इन्होंने बता दी, क्योंकि इनको भी पता है ना कि शैतान जो है ना वो लगा हुआ है पीछे, और अवामुन नास के पीछे तो और भी ज्यादा आसानी के साथ वो लगा यानी अपना काम करता है। तो इस वजह से ना शुरू में ये बात कर दी कि हमेशा एक उम्मत रहेगी, एक ऐसी जमात रहेगी जो हक पर कयामत तक कायम रहेगी, ताकि आगे तुम्हें जितनी भी हदीसें मिले ना तो तुम उन हदीसों को मुतलकन हर एक के ऊपर फिट करने की कोशिश ना करो, ठीक है, बल्कि हमेशा इस एक्सेप्शन को अपने जहन में रखना। इसी वजह से पहली हदीस ही उस जमात के बारे में लगती है उन्होंने इस जिक्र उन मुगीबात के अंदर, और इस तरह की और भी हदीसें आगे आएंगी, ठीक है। तो फरमाया ला युबाली हिम अल्लाह बालतन, के अल्लाह ताला उनकी परवाह नहीं करेगा, आज फुर्सत को गनीमत जानते हुए और काहिरी को छोड़कर अपने दीन मतीन के लिए कल की बजाय आज ही कर डालिए, ठीक है। तो कोई सवाल अगर है तो पूछें, आप समझ भी आ रही है, बोले चला जा रहा हूँ। क्लियर है भाई, ये उलमा के बारे में सहाबा के बारे में ये बातें समझ में आ रही हैं, क्लियर हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह तो नहीं है? अगर हुई तो फिर तो मसला बड़ा खराब है, फिर ये इतना घंटे बैठने का कोई फायदा नहीं होगा, सभी खत्म हो जाएगा अगर सहाबा के बारे में बताऊंगा। और सहाबा हैं क्या, सहाबा भी तो उम्मत के उलमा ही है ना, सबसे पहले उलमा का दर्जा ही सहाबा है। नबी अलैहिस्सलाम को थोड़ी आलिम थे, नबी अलैहिस्सलाम क्या थे, नबी अलैहिस्सलाम आलिम नहीं थे, नबी अलैहिस्सलाम मुतअल्लिम थे, ठीक है। उनको तो इल्म जो है वो अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए से देते थे, ठीक है। उन्होंने कोई थोड़ी किसी मदरसे को ज्वाइन किया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, राइट, कोई मदरसे में बैठे थे, कोई उन्होंने जो है वो ये तफक्कहु फिद दीन के ऊपर कोई मेहनत करी थी, ठीक है। उनकी मेहनतें तो अलग थी, ठीक है, वो तो मुजाहिदात में मेहनत करते थे, इबादात में मेहनत करते थे, इल्म हासिल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कोई किसी मदरसे को ज्वाइन नहीं किया, किसी आलिम के पास नहीं बैठे, कहीं पर सफर नहीं किया इल्म हासिल करने के लिए, किया कभी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया इल्म हासिल करने के लिए? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो शान ही है कि वो उम्मी थे, राइट, रसूलुल उम्मी, शान ही है कि वो अनपढ़ थे, राइट, पढ़ना लिखना नहीं आता था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो अल्लाह ताला ने जो अता किया वो तो अल्लाह ताला अंबिया को तो यानी पसंद फरमा लेते हैं और उनको पे सब कुछ दे देते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना दिया तो किसी को इतना नहीं दिया। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम तो मुतअल्लिम थे ना, उस्ताद थे, क्या फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुइस्तु मुअल्लिमन, ठीक है, मैं तो यानी मुअल्लिम थे, मुतअल्लिम नहीं, मुअल्लिम, ठीक है, कि मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया, राइट। तो फिर आलिम कौन थे, आलिम तो नबी अलैहिस्सलाम के शागिर्द हुए ना, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत में इल्म हासिल किया, जिन्होंने असहाबे सुफा के तौर पर मस्जिद के अंदर मुशक्कतें उठाई, ठीक है, खाने को कुछ नहीं होता था, पहनने ओढ़ने को कुछ नहीं होता था, राइट, तो वो थे आलिम सारे के सारे। तो सहाबा हमारी उम्मत के सबसे पहले आलिम हैं और ये आलिमों का सिलसिला जो है वो आज तक चला आ रहा है, ठीक है। तो जिसने आलिम की रेस्पेक्ट नहीं करी ना तो फिर वो कल को यानी अपने दौर के उलमा की जो रेस्पेक्ट नहीं करता ना, फिर उसको सजा क्या मिलती है कि फिर उसको धकेला जाता है कि वो फिर पिछले दौर के उलमा की भी बेअदबी करता है, फिर पिछले दौर के भी उलमा की बेअदबी करता है, हत्ता कि उसकी बेअदबी जो है वो सहाबा तक पहुंचती है। और जब सहाबा पे बेअदबी पहुंच गई तो जो तो शागिर्दों के ऊपर तनकीद करने वाला दरअसल उस्ताद पर तनकीद कर रहा होता है, ठीक है। तो फिर वो बंदा उस्ताद पे तनकीद करता है, और वैसे तो ईमान सहाबा पे तनकीद से ही खत्म हो जाता है, इसलिए कि कुरान एक बात कहता है सहाबा के बारे में और आप जो है उसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तो आपका ईमान कहाँ बचा बाकी रहा। लेकिन चलो अगर बहुत ज्यादा रिलैक्स मामला रखेंगे, नहीं नहीं जी सहाबा के ऊपर तनकीद करने से ईमान खत्म नहीं होता, ठीक है, बड़ा पोलिटिकली करेक्ट जिसको कहते हैं ना, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब तनकीद करेगा तो फिर तो खत्म हो गया ना मामला, फिर तो एक लम्हे की तनकीद इंसान को ईमान से फारिग कर देगी, ठीक है। तो आगे जो हदीस है इसकी इबारत और तर्जुमा देख लेते हैं कम से कम, कि फरमाया قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لقعبنا لقعن, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि कयामत कायम नहीं होगी यहाँ तक कि दुनिया में उस अच्छे लोग खुद कमीने यानी बेवकूफ, लुका मतलब कमीना बेवकूफ, बेटे कमीनों के होंगे यानी यानी नस्लन कमीने होंगे, ठीक है, यानी पूरे ऊपर से लेके नीचे तक यानी इस लेवल के लोग होंगे और वो उस जमाने में अच्छे कहलाएंगे, ठीक है। तो लुगात में छोटी सी हदीस है ये, तो लात को मुसात हुई, ये तो हम पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं, ये आए थे। कॉलर थ्री साहब कौन है, कल भी शायद आए थे, आप अपना नाम लिख करें और दूसरे एक अपने आपको म्यूट कर लिया करें, म्यूट करना पड़ेगा। अच्छा नहीं, तो करने पर भी म्यूट नहीं हो रहा है। एनीवे तो क़यामत कायम नहीं होगी यानी ला तक़ूमु सातु हत्ता हत्ता के यकूना, तो ये याद होगा आपको कि हत्ता के बाद अगर फेरे मुजारे आए तो अन मस्दरिया महजूफ होता है और अन मस्दरिया यकूनु को यकूना बना देता है यानी हालत नसब में डाल देता है, ठीक है। और दूसरा ये काम करता है जो कि आपको शायद मैंने नहीं बताया था कि एक तो हालत नसब में डालता है, दूसरा क्या करता है कि फेले मुजारे तो एक फेल है ना, वर्ब है, लेकिन उस वर्ब को वो मस्दरी मानी में कर देता है, इसी वजह से उसको अनमस्दरिया कहते हैं, ठीक है, यानी आईएनजी फॉर्म में ले आता है। हत्ता के होना यानी यकूनू का मतलब होता है होगा, लेकिन हत्ता के बाद आया ना तो इसका तर्जुमा करेंगे हत्ता के होना, ठीक है, या हो जाएगा, या बल्कि हो जाएगा भी नहीं, यानी ऐसा होगा हो, यानी मस्दरी मानी में आता है, तो ये बाद में देखेंगे। असअदुन्नासी इंशाल्लाह, असअदु ये इसम तफ़ज़ील का सीगा है, ठीक है, अकबरू के वजन पर, तो असअदु सईद से निकला, सईद कहते हैं खुशबख्त या अच्छा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा अच्छा, असअदु का मतलब सबसे ज्यादा अच्छा, सबसे ज्यादा सईद। असअदु नासी, तो अन्नास इसका मुदाफिर ही बन रहा है, तो लोगों में सबसे ज्यादा अच्छा। बिद दुनिया, ठीक है, दुनिया में या दुनियावी एतबार से या दुनिया में, ठीक है, यानी दुनिया में जो सबसे ज्यादा शरीफ माने जाएंगे ना वो कौन होंगे, लुका, तो लुका उनकी यहाँ पे लुगात में लिखा हुआ है कि हरामी कमीना मारफा की सूरत में ये गैर मुनसरफ होता है, तो वो गैर मुनसरफ तो अभी आपको नहीं पढ़ा है, तो ये लुका उन का मतलब ये होता है, यानी बेवकूफ़ तो एक कम दर्जे का लफ्ज है इसके लिए, ठीक है, यानी बहुत बड़े दर्जे का की बुराई रखने वाला शख्स। तो लकिया यलकाउ इसका इसकी सर्फ सगीर चलती है, लुकअन व लकातन इसका मस्तर बनता है, इसका मतलब होता है कमीना, ठीक है। तो तशरी इंशाल्लाह इसकी कल देख लेते हैं, एक और क्लास है इस हफ्ते में हमारी, कोई सवाल अगर है तो अभी पूछ लें वरना फिर हम यहाँ पर क्लास रोकते हैं उसकी। ठीक है, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.